देसी चूत चुदाई लाइव देखी मैंने अपने गांव की हवेली के पिछवाड़े में, जहां हमारा चौकीदार पड़ोस की एक जवान भाभी की चूत मार रहा था। दोस्तों, कहानी के अगले भाग चौकीदार ने मेरी लाइव चुदाई देखी। मैं आपने पढ़ा था कि मैंने अपने पति के साथ गांव गई और अपनी हवेली में रुकी। रात को मेरा मन लंड लेने को हुआ तो मैंने पति को गर्म किया और हवेली के आंगन में मज़े किए। तभी मैंने देखा कि हवेली का चौकीदार छत से हमारी चुदाई देख रहा था। मुझे इस बात से बहुत उत्तेजना हुई। मैंने अगले दिन फिर से वही किया। अब मेरा मन चौकीदार को पटाकर उसका लंड खाने का हो चुका था। तो मैंने क्या कौतुक किए, पढ़े। नहाने बैठी तो देखा कि साबुन ख़त्म हो गया है। तुम मेरे लिए नहाने वाला साबुन ला दो। ये कहकर मैंने राजू के हाथ में 100 रुपये का नोट रख दिया। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे आप जैसी गोरी गोरी भुजाई को साबुन में मज़ा नहीं आएगा। कहो तो दूध भिजवा दूँ, उसी में नहा लीजिए, आपका गोरा बदन और निखर जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और हंसकर टाल दिया। फिर राजू किराने की दुकान से साबुन लाया और बाकी बचे पैसे मुझे लौटाने लगा, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बाकी के 80 रुपये और उसकी जेब में डाल दिए और फिर मटकते हुए अंदर की तरफ चली गई। पीछे से राजू भी आ गया। मैंने कहा, क्या हुआ राजू, कोई काम है क्या? राजू ने कहा, भौजाई आज आंगन में झाड़ू नहीं लगी है, सोच रहा हूँ लगा दूँ। मैंने कहा, ठीक है लगा दो, तब तक हम नहा कर आते हैं। मैंने अपने कपड़े आंगन में ही पड़ी खाट पर रख दिए थे, जिनमें मेरी साड़ी ब्लाउज पेटीकोट ब्रा और पेंटी भी थी। स्नानागार आंगन में ही बना था, इसलिए मैंने पानी भरा और फिर नहाने के लिए अंदर चली गई। स्नानागार का दरवाज़ा लकड़ी का था और उसकी दरारें ऐसी थी कि बाहर का नज़ारा तो साफ दिखता था, लेकिन बाहर का कोई भी अंदर नहीं देख सकता था। मैं नहाने लगी और फिर राजू आंगन में सफाई करने लगा। कुछ देर सफाई में हो गई और राजू जाकर खाट पर बैठ गया, जहां मेरे कपड़े थे। राजू ने मेरे कपड़ों का मुआयना शुरू कर दिया। मेरी ब्रा को हाथ में लेकर उसने उसे सूंघना शुरू कर दिया। मैं दरवाजे की दरारों से ये नज़ारा देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। कुछ ही देर तक ऐसे ही खेलने के बाद उसने मेरे कपड़े रख दिए और फिर खाट पर लेट गया। मैं वैसे भी भीगी हुई गुसलखाने से निकली और जाकर राजू के सामने खड़ी हो गई। मेरा पेटीकोट मेरे जिस्म पर चिपका था और मेरे निप्पल झलक रहे थे। मैंने कहा, राजू उठो, यहाँ मेरे कपड़े रखे हुए हैं। राजू ने कहा, भौजाई आप ऐसे ही अच्छी लग रही हो, कपड़े पहनकर क्या करोगे? मैंने राजू के गाल पर एक चपत लगाई और कहा, धत बदमाश। राजू ने कहा, भैया को कौन बताएगा, मैं तो नहीं बताने वाला, और अच्छी भौजाइयाँ अपने देवर की शरारतें पति को नहीं बताती, ये उन दोनों के बीच की बात होती है, क्योंकि भौजी पे आधा हक तो देवर का भी होता है ना। मैंने कहा, तुझसे बातों में तो कोई नहीं जीत सकता। ये कहकर मैंने अपने कपड़े उठाए और अंदर जाकर पहनने लगी। शाम को क्योंकि मैं अकेली थी, इसलिए आज मैं आंगन में अकेली ही थी। खाना पीना करने के बाद मैं सोने की तैयारी में थी। रात को 10 बजे थे और मैं सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर लेटी थी। मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी जो हवेली के पीछे से आ रही थी। चांदनी रात थी, इसलिए मैंने कोई टॉर्च नहीं ली और चुपके से निकल कर गौशाला के पास आ गई। अंदर से किसी लड़की की आहें भरने की आवाज़ें आ रही थी, बीच बीच में राजू के गाली गलौच करने की भी। मैं कान लगाकर सुनने लगी। अंदर चुदाई चल रही थी। मैं गौशाला के दीवार के ओट में खड़ी होकर ये सब देख रही थी। नीचे ज़मीन पर पुआल बिछी थी और उसी पर राजू एक लड़की को चोत रहा था। उसके गले में मंगलसूत्र पड़ा था, इसलिए अंदाज़ा लगा कि कोई शादीशुदा औरत है। राजू बहुत ज़ोर से उसे चोत रहा था और लड़की खूब मज़े से आहें भर रही थी। थोड़ी देर बाद राजू के झड़ने का समय आया तो उसने उस औरत के भीतर ही अपना बीज छोड़ दिया। दोनों हाँफ रहे थे और फिर राजू पेशाब करने के लिए उठा। मैं ज़रा किनारे होकर छिप गई। राजू के जाने के बाद मैंने फिर से गौशाला देखा। वो औरत पड़ी हाँफ रही थी और अपने ब्लाउज से अपनी चूत से बहता वीर्य साफ कर रही थी। मेरा ध्यान उसी पर था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरा मुंह बंद कर दिया और फिर कमर में हाथ डालकर मुझे अपने काबू में कर लिया। मैं सहम गई और मारे डर के चुप हो गई। वो मुझे उठाकर गौशाला से दूर दीवार के पास ले गया। उसने मेरा मुंह दीवार की तरफ कर दिया और पीछे खड़ा हो गया। इस दौरान उसने मुझे अच्छे से जकड़ रखा था और मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोलने की हालत में थी। तभी मेरे कानों में धीरे से आवाज़ आई, यहाँ क्या कर रही हो भौजी? ये राजू था, जो इस वक्त सिर्फ एक तौलिए में था। उसकी आवाज़ सुनकर मैं ज़रा शांत हुई और कहा, नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा कि देखो तुम क्या कर रहे हो, बस इसीलिए आई थी। राजू ने कहा, आज सीमा भौजी की प्यास बुझाने में व्यस्त थे। कोई काम है क्या आपको? उसने अब मेरे मुंह पर से हाथ हटाया और मेरी गर्दन पर फिराने लगा। उसका बायां हाथ मेरी कमर को जकड़े हुए था और मेरे नितंब उसके लंड से टकरा रहे थे। मैंने कहा, काम कुछ नहीं है, गुजर रही थी यहाँ से इसलिए रुक गई। राजू ने मुस्कुरा के कहा, और आप मेरी चुदाई देखने के लिए रुक गई? ये कहकर उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी गर्म सांसें मेरे कान से टकरा गई। मैंने कहा, ये लड़की कौन है? राजू बोला, ये दीनू काका की बहू है, पति कमाने में शहर गया हुआ है इसलिए इसका ख्याल अब मुझे ही रखना पड़ता है। यह कहकर राजू ने मेरी क्लिविस को सहलाना शुरू कर दिया। राजू की बात में एक कामुक भावना थी। मैंने पूछा, ये रोज़ तुम्हारे साथ सोती है? राजू ने कहा, नहीं, हफ्ते में एक दो बार इसकी गर्मी निकाल देता हूँ। अब राजू मेरे नितंबों से चिपक गया और मुझसे पूछा, कैसी लगी आपको मेरी ठुकाई? मैंने कहा, वो तो मैं देख नहीं पाई इसलिए पता नहीं। राजू ने अब अपना हाथ मेरे ब्लाउज पर फिराना शुरू किया और कहा, कहो तो दिखा दूँ। मैंने कहा, कैसे, सीमा मान जाएगी? राजू ने कहा, टेंशन मत लो, हम हैं ना, बस एक छोटी सी शर्त है, आपने कपड़े बहुत पहन रखे हैं, इनको कम करना पड़ेगा। मैंने कहा, मतलब? राजू बोला, अरे तुम इतना सब देखोगी तो मुझे भी तो कुछ देखने को मिलना चाहिए ना। ये ब्लाउज और पेटीकोट हटाओ और ब्रा पेंटी में चलो मेरे साथ। मैं कुछ ना बोल सकी और दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ी रही। राजू ने मुझे अपनी ओर घुमाया और फिर पूछा, क्या कहती हो भौजी, मंजूर है? मैंने कोई जवाब ना दिया तो राजू ने खुद ही मेरी पेटीकोट का नाड़ा खींच दिया। मैं शर्म से गड़ गई। अब राजू ने अपने हाथ मेरे ब्लाउज पर रखे और एक एक करके हुक खोलने लगा। कुछ ही देर में मेरा ब्लाउज भी ज़मीन पर पड़ा था और मैं ब्रा पैंटी में उसके सामने नंगी खड़ी थी। राजू ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, बिल्कुल हीरोइन लगती हो भौजी तुम तो। उसने मेरी कमर में हाथ डाला और फिर मुझे अपने साथ गौशाला के बाहर ले गया। राजू ने कहा, भौजी जब मैं सीटी बजाऊं तो अंदर आ जाना। मैंने हाँ कहा और अंदर सीमा के पास चला गया। सीमा के सामने जाते ही उसने अपना तौलिया निकाल दिया। उसका सांवला कसरती बदन मादाओं को रिझाने के लिए काफ़ी था। उसने सीमा की आंखों पर उसी की साड़ी से पट्टी बांधी और उसके मुंह में अपना लंड डाल दिया। फिर सीटी बजाई तो मैं धीरे से पुआल के पास आकर बैठ गई। अब मैं एक एक नज़ारे को बड़े ध्यान से देख रही थी। सीमा राजू के काले लिंग को बड़े प्यार से चूस रही थी, जैसे सालों बाद उसे चूस रही हो। राजू भी अब मुझे दिखा दिखा कर उसका मुंह चोद रहा था। कुछ देर बाद राजू ने सीमा से कहा, साले सिर्फ लंड ही चूसेगी क्या? मेरे टट्टे कौन चूसेगा बहन की लोड़ी? ये कहकर उसने सीमा के मुंह में अपने टट्टे ठूंस दिए। सीमा की आंखें बंद थी इसलिए उसे मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। इसी तरह कुछ देर तक चुसवाने के बाद राजू ने सीमा को कुतिया बना दिया और उस पीछे जाकर उसकी चूत पर अपना लंड रगड़ने लगा। सीमा के मुँह से ई आह की आवाज़ें आ रही थी। कुछ देर उसके चूत सहलाने के बाद राजू ने लंड अंदर डाल दिया। सीमा के मुंह से एक मीठी आह निकली और वो राजू की ठुकाई में मस्त होने लगी। राजू बीच बीच में उसके गांड को चाटे लगा रहा था और साथ ही गंदी गंदी गालियां देकर उसे चोद रहा था। चूत में लंड घुसा तो इतना चिल्ला रही है, जब गांड मारूंगा तब क्या होगा? मैं तो ये सोच कर ही डर गई कि जब ये सांड गांड मारने पर आएगा तब क्या होगा। इसी तरह वो मुझे दिखा दिखा कर सीमा को चोदता रहा। यह क्रम बहुत देर तक चला और फिर राजू के झड़ने का समय आया तो उसने अपना लंड सीमा के मुंह में दे दिया और वहीं झड़ गया। सीमा उसका पूरा वीर्य गटक गई। अब उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इस दौरान सीमा झड़ भी गई थी। जब मैंने जाने में ही अपनी भलाई समझी, चुपके से निकली और बाहर पड़े अपने कपड़े उठाकर बिस्तर पर आ गई। देसी चू चुदाई देखकर अब तक मेरी सांसें तेज हो गई थी और काफ़ी गर्म थी, इसलिए गुसल खाने में गई और जाकर उंगली करके शांत हुई। अगली सुबह फिर से पेटीकोट में मैं राजू के सामने चली गई। अब राजू से चुदने की मेरी लालसा बढ़ चुकी थी। राजू ने मुझे देखा और कहा, का हुआ भौजाई, आज फिर साबुन ख़त्म हो गया क्या? मैंने कहा, नहीं, शैम्पू ख़त्म हो गया है, मेरे लिए शैम्पू ला दो। राजू ने पैसे लिए और जाकर शैम्पू ले आया। मैंने शैम्पू लिया तो राजू ने पूछा, भौजाई कल नींद तो आई थी ना? मैं ज़ोर से हंसी और धत बोलकर अंदर की तरफ चली गई। पाठ को ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी कहानी।